Narada Uvacha Praradopi Tata Chakre Pituyat Samparayikam Pituyat Samparayikam Pituyat Samparayikam Pituyat Samparayikam Yataha Bhagavan Rajan Abhishekto Tridati Bhi
Krishna Kripa Murti Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ke dwara Srila Prabhupada ki Anuvad Shri Narad Muni ne aage kaha Is prakar Purn Purushottam Bhagwan ki agya anusar Prahlad Maharaj ne अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। तात्पर्य, यह आवश्यक है कि समाज चार प्रकार के सामाजिक वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित हो। यहाँ हम यह देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। अतएव समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नेता होने चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में पटु हों, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन दे सकें और जनता क्रमशः पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके।
नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
सो द श्रीमद् भागवतम इज conversation within a conversation with a conversation inside one layer inside like a layer cake.
Srimad Bhagavatam mein samvad ke andar samvad uske andar samvad ek satah ke andar dusri satah aise varnan kiya gaya hai.
So here we see we're back to Narada Muni again.
To yahan pe hum dobara Narad Muni ke
the previous narration of the pastimes and interaction of Lord Yashodhara and Prahlad was being recited by Prahlad Maharaj.
तो इससे पूर्व नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के बीच में चर्चा हो रही थी।
I'm sorry, Narada Muni.
और उसे नारद मुनि बता रहे थे। तो अब हम दोबारा से नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज की चर्चा पर आ गए हैं।
Of course, because they're shrutidars. Shrutidar means photographic memory.
ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी श्रुतिधर थे। श्रुतिधर का मतलब होता है कि जिनकी याददाश्त बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह हो।
So therefore to describe the conversation and prayers and discussion between Lord Shingadev and Prahlad, you could say in modern language is no big deal for somebody who is a Shrutidhar because they have crystal clear recollection of every word. They don't miss anything.
तो महाराज बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के बीच में हुए संवाद को वैसे का वैसा ही सुना देना आज की भाषा में अगर कहा जाए तो नारद मुनि के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे श्रुतिधर होने के कारण सब चीजें वैसे ही याद कर लेते थे जैसे हम फोटो खींच लेते हैं और जिस चीजों को कैद कर लेते हैं फोटो में।
सो There is another significance because Narada Muni is the guru of Prahlad Maharaj.
यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि नारद मुनि प्रहलाद महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं।
So we see the etiquette.
तो हम यहाँ पे शिष्टाचार देखते हैं.
That the spiritual master enjoys and takes satisfaction in glorifying the good qualities of the disciples.
कि आध्यात्मिक गुरु को बहुत आनंद और खुशी का अनुभव होता है अपने शिष्यों के गुणों का बखान और गुणगान करने में.
This is Vaishnav etiquette.
ये वैष्णव शिष्टाचार है.
It is not that the guru is meditating. I am big, big man, and they are little fools. It is not that the guru is thinking like that.
ऐसा नहीं है कि गुरु ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और बाक और वे सब बहुत ही छोटे मूर्ख हैं. ऐसा नहीं है. गुरु ऐसा.
Otherwise, it would make a mockery out of Shikshastak. If a guru is thinking, I am big man, and these poor, stupid people in front of me, let me see if I can teach them something. If guru was thinking like that, then he's not bona fide guru. Certainly not.
अगर गुरु इस प्रकार सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ और मेरे अंतर्गत जितने शिष्य हैं वे सब मूर्ख हैं, तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है शिक्षाशास्त्र के अनुसार.
Because the guru must follow Shikshastaka, whether in time he is before or after Chaitanya Mahaprabhu, it doesn't matter. The principle of Acharya is there that the guru must live by Shikshastaka. Even before Chaitanya Mahaprabhu.
गुरु को शिक्षाशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, यदि भी वो चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भी उपस्थित हो.
Acharya is thinking, I am das, anu das, anu das. Now how can he be bona fide acharya? Cannot be. Cannot be.
जब तक एक आचार्य अपने आप को दास दास अनु दास नहीं समझ रहा, तो वो प्रामाणिक आचार्य नहीं हो सकता.
If we hear Srimad Bhagavatam properly, if we hear the Shastra properly, then we must study the guru-disciple relationships, the relationships of the Sevite, the devotee, and the Supreme Personality of Godhead. Write down. We must study these relationships that are given in the Srimad Bhagavatam. These different types of relationships, especially relationships between Vaishnavas, and relationship between guru and disciple, we have to study what is real Vaishnav, because we are not yet real Vaishnavs.
Maharaj bata rahe hain ki humko Srimad Bhagavatam ke adhyayan mein aur shastron ke adhyayan mein isko bahut hi bariki se iska adhyayan karna chahiye ki guru aur shishya ke beech mein sambandh kaise hote hain, Vaishnav aur Vaishnav ke beech mein sambandh kaise hote hain, kyunki abhi hum vastavik Vaishnav nahi hain. तो इन संबंधों का अध्ययन करने से हमको इसका ज्ञान प्राप्त होगा.
That is yes and no. Actually, in one sense, we are Vaishnavas because Chaitanya Mahaprabhu said anyone who chants the Hare Krishna Maha Mantra is a Vaishnav. So, in one sense, we are Vaishnav, but we are not very high grade. That's all. We are not very high grade.
तो एक तरह से हम वैष्णव हैं भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो वैष्णव है, लेकिन फिर भी हम उतने ऊंचे स्तर के वैष्णव नहीं हैं।
We are functioning on the platform of shadow attachment.
हम छाया आसक्ति के स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
So shadow attachment means that the level of attachment we have, we are part of Krishna's fan club. We like Krishna.
छाया आसक्ति का मतलब यह है कि हम भगवान कृष्ण के फैन क्लब का एक हिस्सा है, हम कृष्ण भगवान को पसंद करते हैं.
Like in the summertime, those who show up at Mangalarti just in time for the fan, that's Krishna's fan club.
हाँ, महाराज बता रहे हैं कि जब कोई मोर पंख होते समय मंगल आरती पे आता है तो उसको कहते हैं कृष्ण का फैन क्लब में एक.
So shadow attachment on the other hand, any kind of attachment for Krishna is so powerful that bhakti arises.
लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण के लिए छाया आसक्ति ही क्यों हो या किसी भी प्रकार की आसक्ति इतनी शक्तिशाली है कि इससे भक्ति का जन्म होता है.
Just like if you are in the shadow of a giant, supposing there's some giant as tall as this building.
अगर हम इस अनुमान लगाएं कि इस बिल्डिंग के जितना बड़ा कोई व्यक्ति है,
If you're in the shadow of that giant, you're going to feel some effect, you know.
और अगर आप उसकी छाया के अंदर हो तो आपको उसका प्रभाव महसूस होगा.
But this case, shadow attachment means we have got some attachment. If you, we see New Year's Day, how many people wanted to start the new year by coming to see Krishna? This is wonderful. This is glorious.
तो महाराज बता रहे हैं शैडो अटैचमेंट का छाया आसक्ति का मतलब है कि हम कुछ आसक्त हैं भगवान कृष्ण से. जैसे महाराज बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना नया साल भगवान राधा राधिका रमन जी कृष्ण बलराम जी के दर्शन करके शुरू किया, तो ये बहुत ही महिमा मंडित और बहुत ही अच्छी बात है.
But in America, I mean, I was surprised to see such a large crowd. I mean, you know, 150 people at Mangal Arati on New Year's Day, because so many of them stay up late the night before, and then they're coming to Mangal Arati because they want the auspiciousness. This is called culture. This is real life.
तो महाराज बता रहे हैं कि महाराज ने तकरीबन 150 भक्तों को मंगल आरती में देखा नए साल में, यद्यपि वो रात को भी लेट सोए होंगे, लेकिन यही वास्तविक संस्कृति है कि भगवान के दर्शन से साल शुरू करना ये बहुत ही शुभ है.
The point is to understand the power of even a little attachment to Krishna, how powerful it is. If you're even a little attachment.
तो हमें इसमें समझने की बात ये है कि भगवान कृष्ण से छोटी सी आसक्ति भी बहुत शक्तिशाली है.
I've said this many times in class, and I'm sure other, you know, senior devotees have said the same, that Prabhupada's order, present tense, not past tense. When we speak of Prabhupada's order, we speak in the present tense, not in the past.
तो महाराज बता रहे हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है अपनी कक्षाओं में, और बहुत सारे अन्य वरिष्ठ वैष्णवों ने भी ये बताया होगा कि प्रभुपाद जी का आदेश, ये हम जब भी प्रभुपाद जी के आदेश के बारे में कहते हैं तो हम वर्तमान में बात करते हैं, भूत में नहीं.
So Prabhupada's order is present tense. Somehow or other, just become attached to Krishna. If you don't have that memorized, write it down.
तो ये आदेश है कि किसी भी तरह भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाइए. अगर आपको ये याद नहीं रहता तो लिख लीजिए.
Or even if you do have it memorized, you should write it down anyways, because Srila Prabhupada says that sometimes repetition is necessary. In other words, actually, we have to become transcendentally obsessed over this point.
तो महाराज बता रहे हैं यद्यपि आपको याद रह भी जाए तो भी आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि दोहराया जाना बहुत जरूरी है. तो इसमें हमें दिव्य रूप से इसमें बिल्कुल मदोन्मत हो जाना चाहिए प्रभुपाद जी के इस आदेश के प्रति कि हमें भगवान कृष्ण से आसक्त होना है.
So, just like if you're trying to start a fire,
जैसे कि आप कोई अग्नि का प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हो,
and the flame starts very small,
और बहुत ही छोटी छोटी उसमें लपटे उठने लगे.
So everybody has experienced or seen that there's a small flame and some red coals are coming.
तो आप सभी को इसका अनुभव होगा कि बहुत ही छोटी आंच होती है और उसके आसपास लाल धुआं उड़ता है.
And what do you do?
तो आपको उसके बाद आप क्या करते हो?
You want that small fire to become a big fire, isn't it? You want that small fire to become a big fire.
और आप चाहते हो कि वो छोटी आंच बड़ी अग्नि में परिवर्तित हो जाए.
You fan the flame.
तो आप उसको हवा देते हो.
Then the burning fire becomes hotter. The flame becomes hotter because the oxygen, the air, Agni likes air also, he eats air also, you know. So the flame goes up, you see.
तो हवा देने के इस प्रक्रिया से वो चिंगारी धीरे धीरे ज्यादा अग्नि में परिवर्तित होने लगती है.
So the process of devotional service, the science of devotional service, as given by the acharyas, is the science of how to fan the flame of bhakti, how to make that flame bigger. That is our only business in Krishna consciousness.
तो जो कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान आचार्य ने दिया है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपनी जो भक्ति की चिंगारी है उसको हवा दे ताकि वो और बढ़ती जाए बड़ी बहुत तेज अग्नि में परिवर्तित हो जाए
So all these people coming to see Krishna on New Year's Day because they want to start the new year on the right foot. And this is so first class, you know, so first class.
तो ये सभी जितने भी लोग भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए साल के पहले दिन पे ताकि उनके साल का शुभारंभ हो सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है महाराज कहते हैं ये फर्स्ट क्लास है
But still, it is shadow attachment.
पर फिर भी ये छाया आ सकती ही है
Because these later on, these same people will watch television, you know.
क्योंकि बाद में वही व्यक्ति फिर टीवी देखते हैं
And those of you who aspire after becoming teachers of Krishna consciousness, you should always pick on television.
आप में से जो भी कृष्ण भावना अमृत के प्रचारक बनना चाहते हैं, उनको टेलीविजन के इस पॉइंट के ऊपर बोलना चाहिए।
Just like last night, I was talking with, you know, when I, because I'm sannyasi, so people presume I'm senior devotee. That's natural.
क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, तो सभी मेरे को एक वरिष्ठ वैष्णव समझते हैं. ये स्वाभाविक है.
So about 9:15 last night after Dipataka Maharaj's class, I'm just sitting in the chair out there and I'm chanting some japa.
सवा नौ बजे के बाद जयपताका स्वामी महाराज जी क्लास के बाद मैं वहाँ पे कुर्सी में बैठकर जप कर रहा था.
And a couple of young men come and they start asking me questions.
और कुछ युवक आके मुझसे कुछ प्रश्न पूछने लगे.
Which is fine, you know. I had some rounds left to chant, but because they were sincerely asking questions, then certainly it was my duty to fulfill their questions.
तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि वे आके मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे यदि भी मैं जप कर रहा था क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे तो मेरा एक कर्तव्य है कि उनका मैं उत्तर दूं।
Actually, one of these young men asked me a question. He said, "I have asked this question of several senior devotees, but somehow or other, he's confessing that he was not satisfied by the answers." That he was getting from them.
तो महाराज बता रहे हैं कि एक युवक ने महाराज को बोला कि मैंने ये प्रश्न बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णवों से पूछा है, लेकिन कुछ किसी वजह से मैं उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ.
So I asked him a simple question, a very simple question, you know.
तो महाराज ने उनसे एक बहुत सरल प्रश्न पूछा.
I said, "Are you attached to your finger?" Do you love your finger?
तो महाराज ने पूछा क्या आपको अपनी उंगली से आ सकती है क्या आप अपनी उंगली से प्रेम करते हो?
He said, "Well, yes, yes."
तो उन्होंने कहा हाँ ये तो हाँ जी.
I said, "You'll be satisfied if I cut off your finger. You'll be okay with that?"
क्या फिर महाराज ने पूछा कि क्या आप संतुष्ट होंगे उससे कि अगर मैं आपकी उंगली को काट दूं तो आप संतुष्ट रहोगे?
His attitude was something like, "Well, I could adjust, you know, I could make do."
तो उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ मैं उसे एडजस्ट कर लूँगा मैं कर लूँगा.
So I confronted him. I said, "Don't bluff, don't be a liar." I told him to his face, "Don't lie." Don't bluff, don't cheat. That is a cheating answer. I told him just like that, very strongly. That's a cheating answer. You're not telling the truth. You're bluffing. That is not a true answer.
तो महाराज ने उनको इसी वेग से बोला कि आप झूठा उत्तर मत दीजिए, धोखा मत दीजिए.
You love your finger. You're attached to your finger.
आप अपनी उंगली से प्रेम करते हैं, उससे आसक्त हैं।
It is not that you will be so detached that somebody cuts and there is pain also. And somebody cuts and there is blood. And somebody cuts your finger. Oh well, no big deal. Nonsense. This is nonsense. Rascal.
तो ऐसा नहीं होगा, आप अपनी अपनी उंगली से इतने विरक्त हो जाएंगे कि कोई आपकी उंगली काटेगा तो आप उससे बिल्कुल भी आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको कोई बड़ी बात लगेगी नहीं। तो ये बिल्कुल ही खराब उत्तर दिया आपने।
So I very much chastise them. Don't bluff. I chastise them. Don't bluff like this. You're not being honest. You're not being truthful. Of course you're attached to your finger.
तुम्हारा इसी वेग से उनको डांटा कि आप ऐसे ऐसे धोखा मत, गलत उत्तर मत दीजिए, वफादारी से उत्तर दीजिए कि आप अपनी उंगली से आसक्त हो और उस पे आप।
It is naturally part of your body.
और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से आपके शरीर का एक हिस्सा है।
So you love your finger automatically because it's part of your body and you're attached to your body and your body parts. One finger, even your little pinky, but if you cut that off, you feel separation.
तो क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा है और अपने आप अपने शरीर से आसक्त हो, तो चाहे आपके हाथ की छोटी उंगली ही क्यों ना हो और अगर आप उसका उसको काट दो तो आप उससे विरह महसूस करोगे।
Similar the connection between Krishna and Jiva, Christian living entity, that is eternal. Nothing can cut it. But when there is separation by consciousness, then Christian loves his part and parcel. It is eternal. It is nitya. It is permanent. Krishna's love. Just as we are attached to this finger, so Krishna is attached to each and every jiva.
उसी प्रकार भगवान कृष्ण के हम अंश हैं। तो जैसे हम अपनी उंगली से आसक्त और उससे प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण हमसे आसक्त हैं और हमसे प्रेम करते हैं। और ये शाश्वत है, नित्य है। कुछ समय के लिए जब हम अपनी चेतना की वजह से उनसे भूल जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, तो भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं।
And how is he attached?
तो वो कैसे है हमसे आसक्त?
We love.
प्रेम से आसक्त है।
It doesn't matter if that jiva is covered by a worm body and stool.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीव मल में एक कीड़े के शरीर से ढका हुआ हो।
Lord Vishnu for the non-devotees is Lord Vishnu.
और अभक्तों के लिए वो विष्णु है।
Paramatma, so much love he has for the unlimited living entities are flowing again and again and again into the universes. So much love he has got that he sets up a whole elaborate stage set just to fulfill their desires. That's called love.
उनको इतना प्रेम है सभी जीवों से जो कि ब्रह्मांड में बार बार चक्कर काट रहे हैं कि वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं केवल उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसे प्रेम कहते हैं।
Supposing Karuna is attached to having a fancy red car.
हम ये इसकी कल्पना करें कि करुणा चंद प्रूजी बहुत ही अच्छी लाल गाड़ी से आसक्त हो।
So I know he's attached to having a fancy red car.
तो महाराज ने
I know he's attached to having a fancy red car.
तो महाराज कह रहे हैं कि महाराज तो ये जानते ही हैं कि उनको इससे आसक्ति है।
So I make arrangement. How? Out of love. I make an arrangement so he can get a fancy red car because he's attached to the concept of fancy red car. So I make some arrangement so he get fancy red car, Mercedes Benz.
तो महाराज कह रहे हैं तो मैं इसकी व्यवस्था करूंगा क्योंकि मेरे को उनसे प्रेम है और क्योंकि और वो उनसे ऐसे गाड़ी चाहते हैं तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा।
So this is called love.
तो इसे प्रेम कहते हैं।
A father buys computer for his son. This is called love.
पिता अपने पुत्र के लिए कंप्यूटर खरीदता है, इसे आसक्ति और प्रेम कहते हैं।
It is a perverted reflection. An upside down reflection.
यद्यपि ये एक विकृत परछाई है, लेकिन फिर भी
of Krishna's relationship with Jiva.
ये भगवान कृष्ण और जीव के संबंध की एक विकृत परछाई है.
Perverted reflection as a father's relationship with love. Out of love he buys a computer. Out of love he buys an attachment. Love and attachment, but it's mundane. It's what the English word is putrefied. It means it is rotten. It is not pure. You know, it is what you call fruit. You know, bodily concept. But still, it is out of under not some love and attachment that is there.
तो महाराज बता रहे हैं कि यद्यपि पिता पुत्र के बीच का संबंध इस जगत में भगवान कृष्ण और जीव के बीच के संबंध के केवल विकृत परछाई मात्र है, लेकिन जब पिता अपने पुत्र के लिए कुछ खरीदता है, कुछ उसको कंप्यूटर दिलाता है, तो वो भी प्रेम है, लेकिन वो एक भौतिक स्तर पे है, शरीर के स्तर पे है, और वो भगवान कृष्ण और जीव के प्रेम के बीच में विकृत परछाई है.
So in the West, there is Aishwarya conception. If there's those that are theists at all, they have Aishwarya conception.
तो पाश्चात्य जगत में ऐश्वर्य भाव का धारणा है.
You know what means Aishwarya conception?
आप में से कौन ऐश्वर्य धारणा जानते हैं?
Opulence, formality, yes. Opulence and formality. Hare Ram. Oh, come on, Jeev Jago. Hare Ram.
शिवपाल गुरु जी ने उत्तर दिया कि ये ऐश्वर्य भाव मतलब कि बहुत औपचारिकता और साजगाज.
Western religion is very strange, actually. The modern, the perverted version of not pure Christianity, but the way it has evolved over the past few hundred years is weird, actually. Off, actually. It's not pure devotional service. It started as pure devotional service, but then it became spoiled by different kings and so forth, like King George, to be specific, who translated the Bible.
पाश्चात्य जगत में जो धर्म है बहुत ही विकृत रूप से उपस्थित है, और महाराज बता रहे हैं कि यद्यपि जो ईसाई धर्म है उसमें सभी पहले तो शुद्ध भक्ति से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसमें विकृति आती गई और आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा विकृत है, और इसकी शुरुआत जॉर्ज नाम के एक राजा से हुई जिन्होंने बाइबल की अनुवाद किया था.
And if they believe in a personality, that God has any personality, God at all, which most of them are very confused, they refer to Bhagavan as God the Father. So this is the relationship. God is the Father, and so he's about, gimme, gimme, gimme. Like we see the children down here. Peter, put up, give me your phone. Peter, give me your money. I need some money. I want to go over to the snack bar. Give me some money. You know, this is the Christian relationship with God. Give me.
तो ईसाई धर्म में भगवान के साथ जो संबंध है वे भगवान को पिता के रूप में देखते हैं, और एक बच्चे जैसे पिता से मांगते रहते हैं, कुछ मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, वैसे ही वे भी मांगते हैं.
So the Christians say it's the Lord's prayer. It's the most important prayer in Christianity.
ईसाई धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना जो है उसमें कहते हैं.
You know what I'm going to say.
आप जानते हैं.
What am I going to say?
महाराज क्या बोलने वाले हैं, कौन कौन जानते हैं?
Yes, yes. My Lord, please give me my us. Please give us our daily bread.
तो वो ये कहते हैं कि प्रिय भगवान मुझे मेरे रोज का खाना दीजिए.
How many of you know what Prabhupada has to say about that?
आप में से कितने भक्ति जानते हैं कि प्रभुपाद इस प्रार्थना के विषय में क्या कहते हैं?
You know what does Prabhupada say about that?
He is saying that Prabhupada says that Lord is supplying even to the elephant without being asked.
Yes, that's one thing. But I'm thinking of specifically about what Prabhupada says about the Lord's Prayer, which is like, this is the core of Christianity, the Lord's Prayer.
तो महाराज बता रहे हैं कि यद्यपि श्री गौरी पूजी ने उत्तर दिया कि भगवान तो हाथी को भी खिला रहे हैं तो बिना मांगे, तो महाराज कह रहे हैं हाँ ये भी ठीक है, लेकिन वो महाराज कोई और विशेष उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं जो प्रभुपाद बोलते हैं।
Okay, what did Prabhupada say about the Lord's prayer? God give us our daily bread. What did Prabhupada say about it?
He was saying that he has the same answer. He was giving the same answer as Sri Gaurav.
No, not exactly. I'll be very specific. Since most of you, see, you have to listen to more Prabhupada lectures. You know.
Maharaj कह रहे हैं कि आपको और प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और महाराज अभी इसका उत्तर बताएंगे.
You lost your chance. Yes, Prabhu.
It is not love for God. It is love for bread.
Yes. Hare Baba.
मुरलीकृष्ण भाई जी ने उत्तर दिया कि ये भगवान के लिए प्रेम नहीं है, ये रोटी के लिए प्रेम है।
He says worship actually. This is worship of bread. This is not worship of God.
तो ये भगवान की पूजा नहीं बल्कि रोटी की पूजा हुई।
So this is the idea. God the Father, He should supply for us.
तो ये है उनका विचार कि भगवान पिता हैं तो उनको सब कुछ हमें देना चाहिए।
So what happens then? All right, no problem. God the Father is very kind. He's supplying the air. He's supplying the water. He's supplying the sunlight, which is now transformed into electricity.
हाँ ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भगवान पिता हैं और वो सब कुछ देते हैं. उन्होंने हवा दी है, पानी दिया है, धूप दी है, और यही धूप अभी बिजली के रूप में हमें प्राप्त होती है.
He is supplying the food.
उन्होंने वो खाना देते हैं.
Which Krishna mentions in the Bhagavad Gita, Anad Bhavanti Bhutani.
जैसे कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं.
He is supplying food. So his kind father, yes, this is true.
तो वो खाना देते हैं, तो वो बहुत ही दयालु पिता हैं, तो ये सत्य है.
But we see typically in this world the perverted reflection in father-son relationship we see in this material world.
और हमें इस भौतिक जगत में पिता पुत्र के बीच में एक विकृत परछाई वाला संबंध देखते हैं.
A wealthy man buys his son android.
एक बहुत अमीर.
You can this nowadays. You can pay 50,000 for an android if you want to. You know.
एक रहीस व्यक्ति अपने पुत्र के लिए एक एंड्रॉइड फोन खरीद के देता है, तो यदि भी 50,000 रुपए का भी क्यों ना हो.
Is lucky, the father's lucky if the son says thanks, dad. Thanks have become so degraded. It's like he just says, hey, cool, hey, Johnny, hey, check out this phone, man, look at this phone, man, this is so cool. And he forgets to say, thanks, dad. He forgets.
और महाराज बता रहे हैं कि पुत्र अगर पिता को धन्यवाद बोले तो ये पिता का सौभाग्य समझाना चाहिए, क्योंकि आज की संस्कृति की दुर्गति इतनी ज्यादा हो गई है कि वो फोन प्राप्त करते ही पुत्र फोन का गुणगान करने लगता है और पिता को धन्यवाद बोलना भी भूल जाता है.
Then, you know, expensive computer, laptop.
और फिर महंगे महंगे कंप्यूटर्स और लैपटॉप,
एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स,
और महंगे महंगे ये वीडियो गेम और सॉफ्टवेयर्स.
Father supplies all these things.
पिता ये सब कुछ पुत्र के लिए प्रदान करता है.
But in a sick society like ours is world today, what does the son do for the father usually in return?
परंतु जो अभी की दुर्गति हुई संस्कृति में समाज में हम देखते हैं कि क्या पुत्र क्या करता है पिता के लिए.
Nothing.
कुछ भी नहीं.
So such young men especially, or it could be girls also, they're called spoiled brats. You know, spoiled brat. Spoiled brats. So the father has got all this wealth and he's supplying all this sense gratification for his son or daughter, and they have no gratitude is there, and they don't give anything in return, no service. They're not thinking about how they're going to help their father, serve their father in his old age. Nothing. Just only how can I gratify my senses? This is going on.
तो महाराज बता रहे हैं कि वो यदि भी पिता सब कुछ देता है उनकी इंद्र तृप्ति के लिए, पर आजकल के जो नवयुवक पुरुष हैं या जो स्त्रियां भी हैं वे बिल्कुल नहीं सोचती कि पिता के लिए उन्हें क्या करना चाहिए या उनके लिए कोई आभार की उनको अनुभूति नहीं होती, कोई भी कृतज्ञता नहीं होती और वे सब बिगड़े हुए औलाद बन के रह जाते हैं.
So the concept of God the Father is defective unless you do something in return for the Father. You're supposed to do some service, some seva.
तो और फिर वे अपने पिता के लिए कोई भी सेवा ये भावना या कुछ भी नहीं विकसित करते, केवल अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं. तो महाराज बता रहे हैं भगवान को पिता के रूप में देखने की धारणा में एक कमी ये है कि अगर उससे आप भगवान के लिए कोई सेवा नहीं कर पाएंगे.
So when there's no gratitude, when there's no service in exchange for everything God is giving, sunlight, air and food, and then the material energy, the energy that they transform into petrol and the cars and the intelligence how to build machines, he's giving all these things and they are just kripana. They won't give in return. They won't give anything to God. Kripana.
तो इस धारणा से यदि भी भगवान ने सब कुछ दिया है और पिता के रूप में पूर्ण अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम बिगड़े हुए औलाद बन के रह जाते हैं, कोई कृतज्ञता नहीं रह जाती, कोई भी भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं होता और हम उन्हें कुछ भी वापस नहीं सेवा में देते और केवल कृपण ही बन जाते हैं.
Just like I hadn't been to South India for 9 years.
तो महाराज बता रहे हैं कि वे दक्षिण भारत में 9 साल के लिए रहे हैं.
But I had to go to Sri Lanka.
क्षमा कीजिए, 9 साल बाद महाराज दक्षिण भारत गए.
So I flew from Delhi to Sri Lanka. And they go along on the coastline, and I've done traveling. I was traveling on the way back also. I was traveling from southern city and Madurai in South India, closest city I could fly to from Sri Lanka in India is Madurai.
तो महाराज दिल्ली से श्रीलंका गए पहले हवाई जहाज से, और फिर श्रीलंका से वापस जो भारत की सबसे महाराज जिस शहर में आए, सबसे पास का शहर मदुरई शहर में आए.
And I was shocked to see the difference from when I had last been 9 years ago.
और महाराज बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए कि 9 वर्ष पूर्व जब महाराज वहां गए थे तो क्या स्थिति थी और आज क्या है.
There, 9 years ago, everything was emerald green. So, whole of South India was emerald green 9 years ago.
9 वर्ष पूर्व पूरा का पूरा दक्षिण भारत में बहुत हरियाली होती थी.
Now I'm seeing more and more drought, so much drought.
और आज महाराज ने देखा मतलब अभी कि उधर सूखा है, सूखा पड़ा है.
But not in areas where the people worship the Supreme Personality of God. Around Tirupati, everything's still green.
परंतु जहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पे हरियाली अभी भी है, जैसे कि तिरुपति में.
People are so pious, then it is green.
उरुपी में लोग इतने ज्यादा पवित्र आत्मा है कि अभी भी वहाँ पे हरियाली.
The whole of South India, they all used to be devoted, 100% used to be devotees of Lord Vishnu.
पर पहले सभी दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के 100% सभी भक्त होते थे.
And now the Christians are ruining everything. They're destroying South India. So they're introducing meat eating. So they are converting all the, not only to Christianity, but they're converting millions of Hindus to become non-veg. And there is a sinful reaction. So, and they are giving nothing to God. What are they doing? Nothing. Nothing. They're not giving anything.
क्योंकि अब ईसाइयों ने पूरा का पूरा दक्षिण भारत को विनाश कर दिया है, सबको ईसाइयों में परिवर्तित करके और मांस भक्षण शुरू करके कि वे सभी अभी इसका पाप कर्म प्राप्त कर रहे हैं और फिर से दुखी हो रहे हैं.
So Lord Shrigadev is saying, those who follow your example, he says to Prahlad, You're the best example of my devotee.
नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि हे प्रहलाद तुम मेरे भक्त के सबसे सबसे अच्छे उदाहरण हो.
Others should follow in your footsteps.
और सबको आपके पद कमलों का अनुसरण करना चाहिए.
Therefore, Prahlad Maharaj and then Prabhupada is saying that Prahlad Maharaj is the best of the Mahajans.
और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज महाजनों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं.
So we are supposed to follow as Rupa Nuga is followers of Rupa Goswami, but we are also followers of Prahlad Maharaj.
तो यद्यपि हम रूपा नुग हैं रूप गोस्वामी जी के को अनुसरण करने वाले लेकिन हमें प्रहलाद महाराज का भी अनुसरण करना.
This we should get from Srimad Bhagavatam, the example of the great liberated devotees.
तो हम श्रीमद् भागवतम से इतने विशुद्ध भक्तों का उदाहरण प्राप्त करते हैं.
Anyone have any question?
किसी को कोई प्रश्न है?
Okay, thank you very much. Jagaguru Srila Prabhupada ki jai. Granthara Shima Bhagavatam ki jai. Shishi Gonitai Jagrat Bhagadev Sabhadra Shishi Krishna Balam Radhikramana ki jai. Nitai Gopramanandi Hari Hari Bhagavatam.